السلام علیکم، یہ پارٹ فن ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب غدار ایجنٹ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ظہیر احمد ہیں۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03212138225۔ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1۔ پیش لفظ۔ محترم قارئین، السلام علیکم۔ میرا نیا ناول غدار ایجنٹ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ناول آپ کے پسندیدہ کردار تنویر کی زندگی کے یادگار لمحات اور واقعات پر مشتمل ہے۔ اس ناول میں آپ کو تنویر سمیت عمران اور اس کے ساتھیوں کی کردار نگاری عروج پر نظر آئے گی۔ کئی قارئین نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے ناولوں مدام شیدارہ، کراسٹری اور بلیک جیک میں ان کرداروں کو انتہائی خوبصورت اور بھرپور انداز میں پیش کیا ہے، لیکن میرے پہلے ناول کرسٹل بلٹ میں سنگھی اور تریسیا کی کردار نگاری جاندار اور بھرپور انداز میں نہیں کی گئی۔ غدار ایجنٹ میں جہاں آپ کو تنویر عمران اور اس کے ساتھیوں کے کردار عروج پر نظر آئیں گے، وہاں سنگھی اور تریسیا بھی آپ کو پہلے سے زیادہ پاورفل اور باصلاحیت دکھائی دیں گے۔ غدار ایجنٹ کی کہانی زیرو لینڈ پر لکھی گئی ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں نہ صرف زیرو لینڈ کے سپریم کمانڈر کے مقاصد کو اجاگر کروں، بلکہ زیرو لینڈ کو اس کی اصل جدت، اصل پہچان اور اس کی اصل حالت کے ساتھ آپ کے سامنے نمایاں کروں۔ اس ناول میں سنگھی اور تریسیا کے ساتھ ایک بار پھر بلیک جیک اور مدام شیتارہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے کردار اور ان کا انداز بالکل منفرد ہے، جسے نہ صرف آپ سب سراہتے ہیں بلکہ ان کرداروں پر مجھے آپ زیادہ سے زیادہ ناول لکھنے کی فرمائش بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میری یہ کوشش کہاں تک کامیاب رہی ہے اس کا فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے۔ مجھے آپ کی آرا کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، والسلام، ظہیر احمد۔ جولیا اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھی ایک میگزین کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اچانک اندر کمرے میں پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر جولیا چونک پڑی۔ اس نے میگزین بند کر کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز سے چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یس، جولیا نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ تنویر بول رہا ہوں جولیا، دوسری طرف سے تنویر کی آواز سنائی دی۔ خیریت کیوں کال کی ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ جولیا کی عادت تھی کہ وہ رات دیر تک یا تو سٹنگ روم میں بیٹھی رسالے اور میگزین پڑھ رہی تھی یا پھر وہ ٹی وی لانچ میں بیٹھ کر پروگرام دیکھتی تھی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران عموماً اس سے 7-8 بجے تک اس کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے کال کرتے تھے یا پھر وہ دن کے وقت اس کے فلیٹ میں آ جاتے تھے، لیکن رات 9 بجے کے بعد اسے کوئی کال نہ کرتا تھا۔ یہ معمولات عام دنوں میں ہوتے تھے، کیس کے دوران تو کوئی بھی کسی بھی وقت اسے کال کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں کراسٹی پاکیشیا میں بھی تھی اور سوالیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایکسٹو نے ان دنوں کو جولیا کے کہنے پر اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ دونوں کئی روز سے جولیا کے ساتھ مقیم تھے۔ کراسٹی اور سوالیہ بھی ان دنوں گہری دوستی ہو گئی تھی اور وہ زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتی تھی۔ ان میں سے ایک کو بھی کہیں جانا ہوتا تو وہ اکیلی نہیں جاتی تھی۔ بازار اور آؤٹنگ کے لیے وہ جولیا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی تھی، مگر جولیا ان کے ساتھ کبھی کبھار ہی جاتی تھی۔ وہ زیادہ وقت فلیٹ میں ہی گزارنا پسند کرتی تھی۔ ان دنوں کی موجودگی میں جولیا نے سیکرٹ سروس کے ممبران سے کہہ رہا تھا کہ وہ رات کو غیر ضروری باتوں کے لیے فون نہ کیا کرے تاکہ کراسٹیو سالیہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ کراسٹیو سالیہ آؤٹنگ کے لیے کافی دیر سے باہر گئی ہوئی تھی اور جولیا انہیں کے انتظار میں تھی۔ ایسے میں تنویر کی کال آ گئی۔ اس کی کال جولیا کو ناگوار گزری تھی، اس لیے اس نے تنویر سے خوش انداز میں بات کی تھی۔ جولیا، مجھے تم سے ایک انتہائی ضروری سلسلے میں ملنا ہے، کیا میں تمہارے فلیٹ پر آ جاؤں؟ دوسری طرف سے تنویر نے کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کرخنگی کا عنصر موجود تھا اور وہ جولیا کو بھی مس جولیا کی بجائے صرف جولیا کہہ رہا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا ضروری کام ہو سکتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ یہ سب میں تمہیں وہاں آ کر بتاؤں گا، میرا اس وقت تم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف سے تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ کیوں ضروری ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، جولیا نے کہا۔ نہیں، وہ بات میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتا، مجھ پر اعتماد کرو، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ तनवीर ने कहा तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ बेच लिए। ये तुम अब से तुम पर कब से आ गए हो? जूलिया ने होंठ बेच कर कहा। ये भी आकर बताऊंगा, तनवीर ने इसी अंदाज में कहा। कहाँ से फोन कर रहे हो? जूलिया ने पूछा। तुम्हारे फ्लैट से थोड़ी दूर एक पब्लिक फोन बूथ से दूसरी तरफ से, तनवीर ने कहा। ठीक है आ जाओ, जूलिया ने कहा। थैंक यू, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, क्रास्टियो सालिया जाग रही है ना? दूसरी तरफ से तनवीर ने पूछा। क्यों, इन दोनों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जूलिया ने कहा। मैं जो बात करने आ रहा हूँ वहाँ इनकी मौजूदगी भी मेरे लिए जरूरी है, तनवीर ने कहा। वो दोनों आउटिंग के लिए बाहर गई थी, बस आने ही वाली होंगी, तुम आ जाओ। तुम्हारे आने तक शायद वो भी आ जाएं, जूलिया ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, तनवीर ने कहा। इसके साथ ही रब्ता मुनकता हो गया। जूलिया ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और हैरत से सोचने लगी कि तनवीर का लहजा क्यों बदला हुआ था। इसे ऐसी क्या बात करनी है जिसके लिए क्रास्टर सालिया का होना भी इसके लिए जरूरी है। इस लम्हे कॉल बेल बज उठी तो वो चौंक पड़ी। कॉल बेल बजाने का मखसूस अंदाज क्रास्टी का था, जिसका मतलब था कि क्रास्टर सालिया वापस आ गई है। जूलिया कमरे से निकली और डरौनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वाकई क्रास्टर सालिया मौजूद थी। वो शॉपिंग बैग से लदी फनी थी। हमारी मदद करो प्लीज, क्रास्टी ने जूलिया से कहा तो जूलिया ने इसे दो बैग ले लिए। आ जाओ, जूलिया ने कहा। वो दोनों अंदर आ गए। उन्होंने तमाम सामान लाकर मेज पर ढेर कर दिया और सोफे पर बैठ गई। बहुत देर लगा दी तुमने, जूलिया ने इनके सामने बैठते हुए कहा। बस आज शॉपिंग करने का मूड था, क्रास्टी ने कहा। क्या लाई हो? जूलिया ने बैगों की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देख लो, सालिया ने कहा। बाद में देखूंगी, तनवीर आ रहा है, पहले इसकी सुन ले। वो हम तीनों से क्या कहने आ रहा है? जूलिया ने कहा। हम तीनों से, क्रास्टी ने कहा। हाँ कह तो यही रहा है, जूलिया ने सर हिलाकर कहा। इसी लम्हे डोरबेल बजी तो वो चौंक पड़ी। तनवीर होगा, वो यहाँ करीब से ही फोन कर रहा था, जूलिया ने उठते हुए कहा और एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसने दरवाजा खोला तो बाहर तनवीर ही था। क्रास्टी और मिस सालिया आ गई है, तनवीर ने पूछा। हाँ आओ, जूलिया ने कहा। तो तनवीर अंदर आ गया। जूलिया ने दरवाजा बंद किया और वो दोनों ड्राइंग रूम में आ गए, जहाँ सालिया और क्रास्टी मौजूद थी। खैरियत, लगता है आज आप खासी शॉपिंग करके आई हैं, तनवीर ने मेज पर बड़े शॉपिंग बैग देखते हुए कहा। हाँ बस यही जरूरत का सामान खरीदना था, वही लाई हूँ, सालिया ने कहा। बैठो, जूलिया ने कहा। तो तनवीर एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। कॉफी पियोगी? जूलिया ने तनवीर से पूछा। नहीं थैंक यू, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। और तुम दोनों? जूलिया ने सालिया क्रास्टी से पूछा। नहीं, हम बाजार से सब कुछ खा पी कर आई हैं, क्रास्टी ने कहा। तो मैं बैठ जाऊं? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इन दोनों ने इस बात में सर हिला दी और जूलिया बैठ गई। वो तीनों गौर से तनवीर को देख रही थी। तनवीर मुतमईन था, इसके चेहरे पर कोई ऐसे तासुरात नहीं थे जिससे पता चलता कि वो कुछ परेशान है। हाँ तनवीर, क्या बात करनी थी तुमने हमसे? जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। आप डिप्टी चीफ हैं, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ इसका ताल्लुक मेरी सर्विस से है, तनवीर ने कहा। इसके लहजे में बदसदूर करखंकी का अंसर मौजूद था। अलबत्ता क्रास्टी और सालिया की मौजूदगी में वो तुमसे फिर इखलाक के दायरे में आकर जूलिया को आप कहने लगा था, सेक्रेट सर्विस ने, जूलिया ने चौंक कर कहा। जी हाँ, मैंने सेक्रेट सर्विस को छोड़ने का फैसला कर लिया, तनवीर ने कहा। तो इसकी बात सुनकर वो तीनों उछल पड़ी। क्या क्या कहा तुमने? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं सेक्रेट सर्विस को छोड़ रहा हूँ, तनवीर ने मजीद करखत मगर स्पाट लहजे में कहा। मगर क्यों, तुम सीक्रेट सर्विस क्यों छोड़ना चाहते हो? क्रास्टी ने पूछा। क्या इसके लिए कोई वजह होनी जरूरी है? तनवीर ने कहा। हाँ वजह होना जरूरी है, क्योंकि जब तुम कोई वजह नहीं होती इंसान कोई काम नहीं करता, सालिया ने कहा। वजह है, मैं आपको बता नहीं सकता, तनवीर ने कहा। क्यों बता नहीं सकते? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस आप वजह ना पूछें तो बेहतर है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने सेक्रेट सर्विस छोड़ने का फैसला कर लिया, इसलिए मैंने सालिया और क्रास्टी के सामने डिप्टी चीफ होने के नाते आपको मुतल्ला कर दिया है। आप ये बात खुद चीफ से करें और इन्हें बता देंगे मुझे सेक्रेट सर्विस के रुकन होने से दस्तबरदार कर दे, तनवीर ने खुश लहजे में कहा। सेक्रेट सर्विस छोड़ने का मतलब जानते हो तुम? जूलिया ने इसे घूरते हुए कहा। हाँ जानता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मेरे डेथ वारंट जारी कर दिए जाएंगे, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या तुम मरना चाहते हो? क्रास्टी ने पूछा। नहीं, तनवीर ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, चीफ को जब मालूम होगा कि तुम सेक्रेट सर्विस छोड़ रहे हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? जूलिया ने इसे घूरते हुए कहा। मैं इस वक्त तक कहीं का कहीं पहुंच चुका हूँगा, तनवीर ने कहा। तो इसकी बात सुनकर ना सिर्फ जूलिया बल्कि क्रास्टी और सालिया भी मुस्कुरा दी। तनवीर, तुम चीफ को बखूबी जानते हो। चीफ जिस तरह पाकिशिया में होने वाले हर जुर्म की बू दूर से सूंघ लेते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओगे तो क्या चीफ तुम्हें तलाश नहीं कर सकेगा? क्राफ्टी ने कहा।
मैं जानता हूँ वो मुझे हर जगह तलाश कर सकता है, मगर एक ऐसी जगह है जहाँ मैं चला जाऊँ तो मुझे कोई भी तलाश नहीं कर सकेगा, तनवीर ने कहा। ऐसी कौन सी जगह है? जूलिया ने चौंक कर कहा। सॉरी मिस जूलिया, मैं इस जगह के बारे में आपको नहीं बता सकता, तनवीर ने सिपाट लेजे में कहा। ठीक है तनवीर, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? डिप्टी चीफ होने के नाते और सीक्रेट सर्विस के मेंबर होने की वजह से मैं तुमसे ये जरूर कहूंगी कि तुम गलत फैसला कर रहे हो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी मौत का सबब भी बन सकता है, और हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि तुम नाहक मारे जाओ। इसलिए मैं एक बार तुमसे जरूर कहूंगी कि तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो, जूलिया ने इसे समझाते हुए कहा। मैं अच्छी तरह सोच समझ कर आया हूँ मिस जूलिया, एक बार नहीं मैं कई बार सोच चुका हूँ, मैं आपके पास हतमी फैसला करके आया हूँ, तनवीर ने कहा। क्या तुम अपना फैसला बदल नहीं सकते? सौलिया ने कहा। नहीं, आई एम सॉरी, तनवीर ने माजत करते हुए कहा। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? अगर तुमने फैसला कर ही लिया था तो तुम्हारे हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? जूलिया ने कहा। मुझे सब आपको बताना बेहद जरूरी था मिस जूलिया, मैं नहीं चाहता था कि कल के कोई मुझसे ये कहे कि मैं बुजदिल हूँ और किसी को बताए बगैर भाग गया हूँ, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। ये भागने वाली बात नहीं थी और क्या है, जूलिया मुंह बनाते हुए कहा। अगर मुझे भागना होता तो मैं यहाँ आकर आप सबको ये ना बताता, तनवीर ने कहा। फिर भी मैं इसे तुम्हें बुजदिली कहूंगी, तुम ये मुझे क्रास्टी और सालिया को बता रहे हो। अगर तुम इतनी ही बाहिम्मत हो तो ये बात तुम खुद चीफ को क्यों नहीं बता देते, जूलिया ने तिनक कर कहा। वो अब मेरे चीफ नहीं है, फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मैं खुद इनसे बात करूं तो मैं यही इनसे बात कर लेता हूं, तनवीर ने कहा। हाँ, तुम जिंदगी और मौत का फैसला कर रहे हो, इसके लिए तुम चीफ से खुद ही बात करो तो बेहतर होगा, जूलिया ने कहा। चीफ से बात करने से पहले तुम इमरान साहब से और दूसरे मेम्बरान से क्यों नहीं बात कर लेते, सालिया ने कहा। नहीं, इस मामले में मुझे किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, तनवीर ने कहा। जरूरत नहीं है तो फिर हमारा सहारा क्यों ले रहे हो, जूलिया ने कहा। मैं आपका सहारा नहीं ले रहा, मैं तो आपको अपने फैसले आगाह करने के लिए आया था, एक बहादुर इंसान की तरह, तनवीर ने कहा। तो क्या लाओ फोन करोगे चीफ से बात, जूलिया ने इसे तंजिया नजरों से देखते हुए कहा। ले आए, मैं अभी बात कर लेता हूँ, तनवीर ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। तो जूलिया सर हिलाकर उठ खड़ी हुई, वो दूसरे कमरे में गई और एक कॉर्डलेस फोन लेकर आ गई। उसने फोन तनवीर के सामने मेज पर रख दिया। तनवीर ने फोन उठाया और चीफ के नंबर प्रेस करने लगा। इसे नंबर प्रेस करते देखकर जूलिया क्रास्टर सारिया ने होंठ भेज लिए थे। एक्सटो रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक्सटो की मखसूस आवाज सुनाई दी। तनवीर ने बटन प्रेस करते ही चूंकि लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया था, इसलिए इन तीनों ने भी एक्सटो की आवाज सुन ली थी। तनवीर बोल रहा हूँ, तनवीर ने बगैर किसी तरवित के कहा। बोलो क्यों फोन किया है, दूसरी तरफ से एक्सटो ने स्त्री लेजे में कहा। मैं इस वक्त मिस जूलिया के फ्लैट में हूँ, मैं मिस जूलिया को अपने एक फैसले से आगाह करने आया था, मैंने इन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है, इनका कहना है मैं खुद आपसे बात करूं, तनवीर ने सिपाही लेजे में कहा। तुम सेक्रेट सर्विस छोड़ना चाहते हो, दूसरी तरफ से एक्सटो ने कहा। तो चीफ की बात सुनकर न सिर्फ तनवीर बल्कि जूलिया क्रास्टी और सालिया भी हैरान रह गई। यस, इस बार तनवीर ने ठोस लेजे में कहा, और यस चीफ कहते हैं की बजाय सिर्फ यस कहा, जैसे अब वो सेक्रेट सर्विस का रुकन ना रहा हो और एक्सटो का चीफ ना हो। जूलिया को फोन दो, एक्सटो ने करखत लेजे में कहा। यस, तनवीर ने बस दूर ठोस लेजे में कहा और फोन जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। जूलिया बोल रही हूँ चीफ, जूलिया ने फौरन रिसीवर कान पे लगाते हुए कहा। तनवीर तुमसे सेक्रेट सर्विस छोड़ने की बात कर रहा और तुम खामोशी से इसकी बात सुन रही हो, उसी तरफ से एक्सटो ने गुर्राते हुए कहा। इसकी गुर्राहट सुनकर जूलिया, तनवीर क्रास्टी और सालिया भी एक बार कांप उठी। चीफ मैं वो जूलिया ने हकलाते हुए कहा। तुम डिप्टी चीफ हो या जूलिया, और तुम्हें सेक्रेट सर्विस के उसूलों का बाखूबी इल्म है, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि सेक्रेट सर्विस में एक बार जो आ जाता है इसकी वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, एक्सटो ने इसी अंदाज में कहा। यस चीफ, मैं तनवीर को यही समझा रही थी, जूलिया ने कहा। एक बार फिर इसे समझा दो, अगर मान जाए तो ठीक वरना इसे गोली मार देना, दूसरी तरफ से एक्सटो ने खुश लेजे में कहा। तो इसकी बात सुनकर तनवीर के साथ साथ इन तीनों के रंग भी उड़ गए। चीफ, जूलिया ने बौखलाते हुए लेजे में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से एक्सटो ने कोई जवाब ना दिया, शायद इसने दूसरी तरफ से रब्ता खत्म कर दिया था। जूलिया ने थके थके अंदाज में फोन का बटन ऑफ किया और उसे मेज पर रख दिया। अब क्या कहते हो, जूलिया ने तनवीर की तरफ गौर से देखते हुए कहा।
इनका अगर यही हुक्म है तो फिर आप गोली चलाकर देख लें, रणवीर ने सर झटक कर कहा तो जूलियन ऐसे बेख्तियार होंठ भींच लिए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अहमकपन छोड़ो और असल बात बताओ, ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? इस बार जूलियन ने गुस्सीले लहजे में कहा, सॉरी मैं कुछ नहीं बता सकता, आप मुझे जाने दें, मैं बहादुरों की तरह जाना चाहता हूँ, मैं अब किसी भी सूरत सेक्रेट सर्विस में काम नहीं करूंगा, तनवीर ने सिपाट लहजे में कहा। तनवीर प्लीज, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी बेहद जरूरत है, काफी ने परेशानी से लहजे में कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, आपके चीफ ने मिस जूलिया को हुक्म दिया तो ये बेशक मुझे गोली मार दें, तनवीर ने इसी अंदाज में कहा तो तीनों खुलकर रह गईं। मैं सचमुच तुम्हें गोली मार दूंगी, अब भी वक्त है, समझ जाओ, जूलिया ने इसे घूरते हुए कहा, आपने मुझे गोली मारनी है, कोशिश करके देखे, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय, तनवीर ने यकलक उठकर खड़े होते हुए कहा तो तीनों भी एक झटके से उठकर खड़ी हो गईं। रुक जाओ तनवीर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा, मुझे रुकना आपके लिए आसान नहीं होगा मिस जूलिया, तनवीर ने कहा। इस बार इसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई थी। क्या मतलब, क्या तुम मुझसे टक्कर लेना चाहते हो, जूलिया ने ऐसी गुस्सीली नजरों से घूरते हुए कहा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुझे जाने दें, वरना, तनवीर ने जानबूझकर अपना फुकरा अधूरा छोड़ते हुए कहा। वरना वरना क्या, जूलिया ने उछलकर इसके सामने आते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मुझे जाने दें, वरना मैं इसे वरना का जवाब जरूर देता, बाहर मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मुझे इसके पास जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, इसके लिए मुझे जाने दें, तनवीर ने बदले हुए लहजे में कहा तो इन सब ने गुस्से से होंठ चबाने शुरू कर दिए। कौन है बाहर, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जूलिया ने इसे खूनी नजरों से घूरते हुए कहा। है कोई, मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, तनवीर ने कहा। शास्त्री सालिया देखो कौन है बाहर, इसे मैं संभालती हूँ, देखती हूँ यहाँ से बाहर कैसे जाता है, जूलिया ने कहा तो क्रास्टी सालिया सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लग गई। रुक जाओ मिस सालिया और मिस क्रास्टी, आप दोनों बाहर नहीं जाएंगी, अचानक तनवीर ने फिनकारते हुए कहा तो वो दोनों रुक गई, इसकी जानिब देखने लगी। तुम्हारा ये अंदाज, तुम तनवीर ही हो ना, तुम जूलिया ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ मैं तनवीर ही हूँ, इन दोनों से कहें कि वो आकर वापिस आकर अपनी जगह पर बैठ जाए, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। अगर मैं ना कहूँ तो, फिर जूलिया ने रीछे अंदाज में कहा, ठीक है ऐसा है तो ऐसे ही सही, तनवीर ने होंठ भेजते हुए कहा। इसने अचानक अपने दाएं पैर के जूते की एड़ी उठाकर जमीन पर मारी तो एक जोरदार धमाका हुआ। जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे अचानक इसके जहन में अंधेरा सा भर गया हो। इसने सर झटका मगर बेसूध, दूसरे लम्हे से अपना जिस्म बेजान होता हुआ महसूस हुआ और वो उलटकर गिरती चली गई। सर्दियों के दिन थे, इमरान लिहाब में घुसा एक साइसी रिसाला पड़ रहा था। इसने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था और कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर ऑन था, लेकिन इन दिनों चौक क्योंकि दारुल हुकूमत शरीफ सर्दी की लपेट में था और दर्जे हरारत -6 था, इसलिए इस कदर इंतजाम होने के बावजूद कमरे में सर्दी थी। इन दोनों सेक्रेट सर्विस के पास चूंकि कोई केस ना था, इसलिए इमरान इसी तरह कमरे में घुसा रहता था और लिहाब में पड़ा साइंसी रिसाले और जखीम किताबें पढ़ता रहता था। सुलेमान इन दोनों अपने किसी अजीज की वफात पर अपने आबाई गांव गया हुआ था, इसलिए इमरान को खुद ही चाय और कॉफी बनाना पड़ती थी। जब भी वो चाय या कॉफी के लिए लिहाब और कमरे से निकल कर बाहर आता तो उसके बेख्तियार दांत बजने शुरू हो जाते और सुलेमान को कोसने लगता, जो गांव जाकर बैठ गया था और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब भी वो किचन से अपने लिए चाय बनाकर लाया था कि चाय का कप प्लंग के साथ सफाई पर रखकर फौरन बिस्तर में घुस गया और रिसाला पढ़ने में मसरूफ हो गया। रिसाला पढ़ते पढ़ते इसने चाय का कप उठाया और इसके सिप पीने लगा। अभी इसने 2-3 सिप ही लिए होंगे कि अचानक कमरे में मौजूद फोन की घंटी बज उठी। हो ना हो, ये फोन करने वाला ना दिन को सुकून लेने देते हैं और ना रात को चैन। इस कदर शदीद सर्दी में मालूम नहीं कैसे वो फोन के नंबर प्रेस कर लेते हैं, इनकी उंगलियां भी नहीं अकड़ती, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन भला इसके मुंह बनाने से फोन की घंटी बजना बंद हो सकती थी। इसने जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरे और खाली कप साइड के मेज पर रखते हुए इसी मेज पर पड़े फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, सर्दी से थरथराता कपकपाता बल्कि कड़कड़ाता हुआ बेचारा अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ब्लैक जीरो बोल रहा हूँ इमरान साहब, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। ब्लैक हूँ इसलिए रात की तारीकी में बोल रहे हो, और वो भी इस कदर शरीफ सर्दी में? जाहिर है तारीकी में उल्लू ही बोलते हैं, चाहे वो डाइट हो या ब्लैक हो। बोलते रहो, मैं भला तुम्हें बोलने से कैसे मना कर सकता हूँ, इमरान ने नाम से पार्ट ले बोलते हुए कहा। इमरान साहब, मैंने आपको एक बहुत जरूरी सिलसिले में फोन किया है। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने सलाम दुआ करते हुए इमरान की बात का नोटिस ना लेते हुए कहा। जरूरी सिलसिले में लोग वॉशरूम जाते हैं ना कि फोन करते हैं, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। वॉशरूम में समझा नहीं, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा, जैसे वो वाकई इमरान की बात का मतलब ना समझा हो। अरे भैया, आजकल के जमाने में जरूरी सिलसिला बल्कि जरूरी काम वॉशरूम में जाने का होता है। ज्यादा खाने के बाद जाहिर है बार बार वॉशरूम ही जाना पड़ता है, इसलिए इसे जरूरी बल्कि बहुत जरूरी कहा जाता है, इमरान ने इसे बाकायदा समझाते हुए कहा। तो दूसरी तरफ ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तौबा है, आप बात को कहां से कहां ले जाते हैं। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा, बातों को ही यहां वहां ले जाता हूं, खुद तो कहीं नहीं जाता, इमरान ने कहा। इमरान साहब, बहुत सीरियस मामला है, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा। फिर वही बात, अरे भाई इतना ही सीरियस मामला है तो भाग कर जाओ वॉशरूम, मुझे क्या बता रहे, इमरान ने कहा। प्लीज इमरान साहब, मैं बहुत संजीदा हूँ, ब्लैक जीरो ने झिल्ला कर कहा। तुम संजीदा हो और मैं रंजीदा हूँ, मेरे रंजीदा होने की वजह से सलमान है और वो जो मुझ गरीब को अकेला सर्दी में ठटने कांपने और दांत बजाने के लिए छोड़ गया है। सारा दिन खुद ही अपने लिए चाय कॉफी बनाना पड़ती है, खाना खाता हूँ, खाना हो तो होटलों और रेस्टोरेंटों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना खर्चा तो मेरा सलेमान नहीं कराता जितना मुझे खाना खाने के लिए होटलों और रेस्टोरेंटों में जाकर करना पड़ता है, सलेमान ने इधर खा खा कर मैं इसका क्रूज होता जा रहा हूँ, इमरान ने कहा। आप पहले सलेमान का कर्ज उतारे, मैं फिर बात करूंगा, ब्लैक जीरो ने कहा। अगर इतनी जरूरी बात है तो बताओ, इमरान ने कहा। तनवीर ने सेक्रेट सर्विस छोड़ दी है, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने अचानक इंकशाफ करने वाले अंदाज में कहा। क्या क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना, इमरान ने चौंकते हुए कहा। तनवीर सेक्रेट सर्विस से सबकदोश हो गया है, ब्लैक जीरो ने कहा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम वाकई रहीम करीम और बड़े बेनियाज है, इमरान ने बड़ी इंकसारी से कहा। क्या मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ कि तनवीर ने सेक्रेट सर्विस छोड़ दी है और आप खुश हो रहे हैं, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं खुश भी हो रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। अल्लाह ताला तो हर हाल में शुक्र अदा करते रहना अच्छी बात है, लेकिन तनवीर का सेक्रेट सर्विस छोड़ने का सुनकर आपका खुश होना मेरी समझ में नहीं आया, ब्लैक जीरो ने बदस्तूर हैरत भरे लहजे में कहा। तुम नाम के ही नहीं बल्कि दिमाग के भी ब्लैक और जीरो हो। अरे तनवीर का सेक्रेट सर्विस छोड़ने का मतलब जानते हो, इमरान ने ब्लैक जीरो को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं मैं नहीं जानता, आपको मालूम है तो आप बता दें, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने बेचारगी से कहा। वो मेरा रकीब रो सफीद था, जूलिया के मामले में अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता था और ना मेरी गाड़ी आगे बढ़ने देता था। मैं जूलिया से जब भी अपने दिल बेकरार की बात करने लगता तो हमेशा मेरे आड़े आ जाता। इसकी मेरी और जूलिया की जो त्रिकोण बनी हुई थी किसी तरह से टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे लफ्जों में ये तनवीर अपना ऊंट किसी करवट बैठने देता था और ना ही जूलिया की ऊंटनी किसी करवट चल लेती थी, और मैं बेचारा इनके दरमियान बेमहार ठंडी ठंडी आहें भरने के लिए रह गया था। अगर आप तनवीर के सेक्रेट सर्विस छोड़ने का इरादा कर लिया है तो इसका मतलब है कि इसका ऊंट किसी करवट जरूर बैठ गया है। सेक्रेट सर्विस के साथ साथ इस्लाम मोहला जूलिया ने भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। इस तरह ये त्रिकोण टूट जाएगी और जूलिया इसके साथ साथ इसकी ऊंटनी की करवट मेरी तरफ हो जाएगी और खुदा खुदा करके शायद मेरे आंगन में भी शहनाइयां बज उठे। इमरान जब बोलने पर आया तो नॉन स्टॉप बोलता चला गया। ओ तो आपने इस नजरिए से खुशी का इजहार किया, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। नजरिया जो भी हो, खुशी खुशी होती है, और तुमने तनवीर के जाने का जो मजदा सुनाया है मेरा तो रवा रवा नाच उठा है, इमरान ने कहा। आप तो ये सब ऐसे कह रहे हैं जैसे आप पहले से ही तनवीर के आउट होने का प्रोग्राम बनाए बैठे हुए हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। और नहीं तो क्या, मेरी तो बस नहीं चलती थी, वरना मैं इसी बस के नीचे कब का इसे कुचल चुका होता, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बस न चलने का मुहासा सुनकर हंस पड़ा। तो आप चाहते हैं कि तनवीर को हंसी खुशी जाने दिया जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। अरे नहीं, इसे रुखसत करने के लिए बाकायदा बैंड बाजे का बंदोबस्त करो, अगर हो सके तो सेक्रेट सर्विस के दूसरे मेम्बरान से कहो कि वो इसे खुशी में सारे शहर में मिठाइयां तकसीम करें। रावी ने इनकी किस्मत में जब चैन लिख दी ही दिया है तो वो इसका भरपूर लुत्फ उठाए, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। इसके लहजे में अजीब सतंज और काट थी, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने इसके तंज और काट को महसूस करते हुए कहा। पहले ये बताओ कि तनवीर की रुखसती की खबर तुम्हें कैसे मिली है? इमरान ने कहा, पिछले दिनों आपने तमाम मेम्बरान को तफरी तौर पर भेजकर इनके टेलीफोन सीटों को अपग्रेड करते हुए इनमें ऐसी डिवाइसेस एडजस्ट कर दी थी जिनका लिंक दानिश मंजिल की एक कंप्यूटर मशीन से था। आपने हुक्म दिया था कि मैं इस कंप्यूटर मशीन के जरिए मेम्बरान की मसरूफियत को चेक करता रहूं और इन टेलीफोन के जरिए जो बातें हों या इन कमरों में जहां ये फोन मौजूद हैं, जो बातें हों या जो वो करें कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है। कंप्यूटर मशीन में सेक्रेट सर्विस के मेहमान के अलग अलग फोल्डर, इनकी फाइलें और इनका डेटा बना रखा है। वो जो कुछ करते हैं मशीन में खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाता है। मैंने इन सबको कह रखा है कि वो रात 10 बजे के बाद अपने फ्लैटों में रहा करें। हर हफ्ते रात 10 बजे मैं कंप्यूटर मशीन पर इनकी मसरूफियात चेक करता हूँ। इनकी मसरूफियात की फिल्म चेक करने से पहले मैं 10 बजे ये देखता हूँ कि वो सब अपने अपने फ्लैट में मौजूद हैं या नहीं। आज एक हफ्ते के बाद मैंने शुरुआत जूलिया से की थी। जब मैंने इसे चेक किया तो मुझे तनवीर जूलिया के फ्लैट में दरवाजे पर खड़ा नजर आया। मैं हैरान हुआ कि मैं इस वक्त अपने फ्लैट में होना चाहिए, फिर वो जूलिया के फ्लैट में किस लिए आया है। बहरहाल जूलिया ने दरवाजा खोला और वो तनवीर को सिटिंग रूम में ले गई जहाँ क्रास्टो और सालिया दोनों मौजूद थी। ब्लैक जीरो ने कहा, फिर इसने तनवीर जूलिया क्रास्टो और सालिया के दरमियान होने वाली बातें इमरान को बताना शुरू कर दी। मुझे तनवीर की बातों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं जूलिया के फ्लैट पर फोन करूं और इन्हें बता दूं कि तनवीर जो कुछ कर रहा है मैं जानता हूं। जूलिया ने अगर इसके इरादों से बात कर सके तो ठीक है, वरना इसे गोली मार दे। फिर जूलिया ने तनवीर को फोर्स किया कि वो इस मामले के लिए खुद चीफ से बात करे। तनवीर शायद पहले ही सब कुछ सोच समझ कर आया था, इसने जूलिया के फोर्स करने पर फौरन मुझसे बात करने की हामी भर ली। मैं चूंकि सब कुछ पहले ही सुन चुका था इसलिए मैंने तनवीर से गुफीले लहजे में बात की और फिर जूलिया से कहा कि वो तनवीर को खुद ही राह रास्त पर ले आए। अगर वो इसकी बात मान जाए तो ठीक है, वरना वो इसे गोली मार दे। मैंने ये कहकर फोन बंद कर दिया। मैं स्क्रीन पर बसतूर इन्हें मॉनिटर कर रहा था। जूलिया के साथ साथ क्रास्टर सालिया ने भी तनवीर को समझाने की कोशिश की मगर वो बाजिद था। फिर जूलिया और तनवीर में तलख कलामी हुई तो तनवीर ने अचानक अपना पैर जमीन पर मार दिया। इसकी बूट की एड़ी में शायद कोई कैप्सूल था जो धमाके से फटा और मैंने सिवाय तनवीर के जूलिया क्रास्टो और सालिया को बेहोश होकर गिरते देखा। तनवीर की इस हरकत ने मुझे चौंका दिया था। फिर तनवीर ने जेब से एक तय शुदा कागज निकालकर मेज पर रखा और फिर उसने कलाई से अपनी रेस्ट वॉच उतारकर इस कागज पर रखी और वहां से निकल गया। इसलिए इसने चूंकि अपनी रेस्ट वॉच जूलिया के फ्लैट में छोड़ दी थी इसलिए मैं इसे फॉलो नहीं कर सका। अगर वो रेस्ट वॉच साथ ले जाता तो मैं इसे फॉलो कर सकता था। क्योंकि मेम्बरान की रेस्ट वॉच में ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं, इन्हें फॉलो किया जा सकता है, ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा। हैरत है तनवीर को बैठे बैठे सिगरेट सर्विस छोड़ने की क्यों सूझ गई। जूलिया और इसकी दूसरी साथियों को बेहोश होकर इसने अपने रेस्ट वॉच में वहीं छोड़ दी है। इसका मतलब है कि वो वाकई गद्दारी पर आमादा हो गया है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मालूम तो ऐसा ही होता है, ब्लैक जीरो ने क्या बात कर रहे हो, क्या तुमने इसके पिछले दिनों की मसरूफियात चेक नहीं की? वो पिछले दिनों क्या किया करता रहता था, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ओ नहीं, तनवीर की इसकी काया पलट की वजह से ही मैं परेशान हो गया, इसीलिए मैं इसने फौरन आपको इतला देना मुनासिब समझा। मैं इसका पिछले दिनों रिकॉर्ड चेक करता हूँ, सीक्रेट सर्विस छोड़ने की इसकी कोई तो वजह होगी जो सामने आ जाएगी, ब्लैक जीरो ने कहा। जूलिया और इसकी साथियों के लिए क्या क्या है तुमने, क्या वो अभी तक बेहोश है, इमरान ने मुंह बनाकर पूछा। मैंने सफदर और नमानी को वहाँ भेज दिया है, ब्लैक जीरो ने फौरन कहा। उनसे राब्ता करो और पूछो कि तनवीर वहाँ जो खत छोड़ गया है इसमें क्या लिखा है, इमरान ने कहा। बेहतर है मैं अभी रब्ता करता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। सेक्रेट सर्विस छोड़ने के पीछे तनवीर का जो भी मकसद हो, बहरहाल ये गद्दारी के जमरे में आता है। शुरू दिन से इन सबको बावर करा दिया गया था कि सेक्रेट सर्विस में शमूलियत के बाद इनकी वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये किताब गद्दार एजेंट का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाइए।